کہ پاکستان میں مس یوز آف لا کی جتنی بھی پٹیشن دائر کی جاتی ہیں اور کنٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ ریلیجیس میٹرس میں کیا جاتا ہے, سیکولر میٹرس میں نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ پریجڈسڈ ہیں. آپ کہتے ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پروفٹ کو کوئی گالی بک دے یا نہ بک دے, لیکن اس سے فرق پڑتا ہے کہ قاتل کو چھوڑ دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی. اسے ہم کہتے ہیں ریلیٹیوٹی. آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یورپین ہسٹری ضرورت نہیں تھی کسی کی کہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے. ضرورت نہیں کر سکتا تھا وہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے. پندرہویں صدی تک ضرورت نہیں تھی کسی کی. لیکن اب کیا کچھ نہیں کیا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ. موویز تک بنا دی, یو نو ڈاونچی کوڈ بنا دیا, فلم بنا دی, پوری 2000 سال کی کرسچینٹی کی تاریخ کے اوپر تبرہ کیا. ایک یعنی کہ جتنے پوپس ہیں ان سب کو قاتل بنا دیا. کیا یہ بلیک بھی نہیں ہے؟ لیکن آپ نے انہوں نے پیشن آف کرائسٹ بنایا. انہوں نے کہا اچھا بیٹا پیشن آف کرائسٹ بنا تھا, ہم ڈاونچی کوڈ بنائیں. تو بتانے کا مطلب یہ فکشن کے نام پہ تم کیا کیا کرنا چاہتے ہو حضرت عیسیٰ کے ساتھ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ہم ریلیٹیوٹی جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے انٹرنزیکلی احترام کوئی چیز نہیں ہوتا. یعنی کہ یہی معاشرہ ہے نا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس کو بند کر دیتا اور حضرت عیسیٰ کی توہین پر اسے اوپن ہارٹ قبول کرتا ہے. ایک ہی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. میں یورپین معاشرے بات کرتا ہوں. اسی معاشرے کے اندر جینوسائڈ کے اوپر یا ہولوکاسٹ کے اوپر لکھنے کے اوپر, کتاب لکھنے کے اوپر, ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ ریفرنس بک لکھنے کے اوپر آپ پکڑ کے بند کر دیتے ہو 8 سال کے لیے. اور اس کے اندر ایجنسیز استعمال ہوتی ہیں. یعنی کہ اس کو دھوکے سے بلا کے ڈیوڈ ارون کو پکڑا انہوں نے, دھوکے سے بلایا اس کو اور اس کو پکڑ لیا. لیکن ایک فکشن جو کہ پوری کی پوری 2000 سال کی کرسچینٹی کی تاریخ کے اوپر یو نو اس کو ایک ایول کے طور پر بتا رہا ہے. یہ بالکل یونیک چیز ہے نا. کرسچینٹی سے آپ کو جتنا بھی اعتراض ہو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ تھیوڈوس کانٹیسٹائن سے لے کر یو نو آج تک جتنے لوگ تھے اور جس کرسچینٹی کو عمل کر رہے تھے اصل کرسچینٹی کو کلینس کرتے رہے. ایک ریلیجیس پرسپیکٹو ہے, مسلمانوں کا پرسپیکٹو ہے. مسلمان بھی یہ تو نہیں کرتے نا کہ ان سب کو قتل کرتے رہے اور یہ پورا کہیں گے بھائی انہوں نے انٹرپریٹ صحیح نہیں کیا, انٹرپریٹیشن کا پرابلم ہے, یا اس کو کنسپریسی تھیئری بنا کے پیش کرتے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اسے آپ چھاپتے بھی ہو, وہ بیسٹ سیلر بھی ہوتی ہے, اس کے اوپر تم مووی بھی بناتے ہو, پوری دنیا میں چلتی بھی ہے وہ مووی اور وہ تم بیٹھ جاؤ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ایک سینس میں آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سینکٹیٹی کو انشور کرتے ہو اور دوسری طرف ریلیجیس سینکٹیٹی کو آپ انشور نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو کی سینکٹیٹی کو انشور کیے بغیر کچھ چیزوں کی لیجیٹیمیسی کو ڈی لیجیٹیمائز آپ نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں کی لیجیٹیمیسی کو کوشچن کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی لیجیٹیمیسی کو ڈی لیجیٹیمائز کرنا ضروری ہوتا ہے, یہ ورنہ ممکن نہیں ہے. تو جو ہیریکلائٹینین فریم ورک ہے جب آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ میٹافزکس آف چینج کو تو قبول کر لیں اور ریلیٹیوٹی آف موریلٹی کو آپ کہیں نہیں میں تو نہیں مانتا ریلیٹیوٹی آف موریلٹی. ہاں چینج کانسٹنٹ نہیں
تو ہر جو بھی ایک اسٹیپ وائز جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہر چیز میں ایک ہی جیسا ہو رہا ہے اور ہر دور میں ایک ہی جیسا ہو رہا ہے.
نہیں ایسا نہیں. اگر یہ فریم ورک ہے ورلڈ کا اور یہ پینڈولم کی طرح یہ کبھی ادھر جاتا ہے اور کبھی ادھر آتا ہے تو سبجیکٹ کے پرسپیکٹو میں وہ تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ٹو اینڈ فرو.
कंटिन्यू
नहीं होती है, वो तो प्लेटो को बताता है कि परमानेंट है, चेंज चेंज में भी परमानेंट होती है। मैं हायराक्लाइटस नहीं मानता, जो रिपीट हो रहा है इटसेल्फ, इट रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो रिपीट इटसेल्फ हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं होता ना पेंडुलम, ये तो इट टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर, टेक हंड्रेड ऑफ ईयर। तो ये तो इसके जमाने में तो ये यहां से यहां तक पहुंचा था, ये खत्म हो गया, और ये जो पैदा हुआ है इसके जमाने में ये यहां पर है, और ये जो पैदा हुआ है तो कई स्पेस और कई टेम्पोरैलिटीज में है ना। तो जब आप किसी स्पेसिफिक स्पेस में मौजूद हैं और स्पेसिफिक टाइम में मौजूद हैं, तो आपके हिसाब से वो चेंज रिपीट होकर वापस आ रहा है या आगे की तरह जा रहा है, तो आप नहीं बता सकते। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, दैट मीन्स दैट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट एक्चुअली द डायनामिक ऑफ द चेंज। ये तो आप यहां पे खड़े होकर बता सकते हो, इधर खड़े होकर आप बता सकते हो कि क्या गेम क्या हो रहा है। अब है आपने हेराक्लाइटस ने फिर कैसे बताया, हेराक्लाइटस कहता है कि बड़ा आदमी, बड़ा आदमी वो होता है जो ऊपर उठ के देख सकता है। हर आदमी के बस की नहीं होती कि वो सिस्टम से ऊपर उठ के सिस्टम को देख ले कि सिस्टम क्या है। लेकिन जब आप सिस्टम से ऊपर उठने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है सिस्टम के बाहर भी कोई स्पेस है जहां पे आप जाकर देख सकते हैं। जैसे हेगल के ऊपर एतराज था कि हेगल कहता है हिस्ट्री जो है उसका डायनेमिक्स को मैंने डिस्कवर कर लिया, तो उसने कहा कि भाई शोपेनहावर ही कहता है, इसका मतलब है स्पेस उसके बाहर कोई थी जहां पे खड़े हो गए, हेगल ने देखा है तारीख को, तो तारीख से बाहर चला गया था खुद, क्या खुद तो कहता कोई भी चीज तारीख से बाहर नहीं, तो फिर इसने कैसे देख लिया तारीख। इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर तुम मसले का हिस्सा हो तो फिर हल का हिस्सा तो नहीं होगा। इसका जवाब मैंने अभी तुम्हें दिया कि प्लेटो या सुकरात कहता है कि बेटा तुम्हें चेंज हर चीज में इसलिए दिखाई दे रही है कि तुम्हारा इल्म का जो जरिया है वो ठीक नहीं है। तुम्हारा इल्म का जरिया है हवाज़े खमसा, हवाज़े खमसा तब्दील होते रहते हैं, लिहाजा उनको हर चीज में तब्दीली दिखाई देती रहती है। अगर तुम्हारे इल्म की बुनियाद सेंस एक्सपीरियंस है, तो सेंस एक्सपीरियंस रिलेटिव होते हैं ना, तबीयत खराब होती है। मसला ये होता है कि वो अपना जो बड़ा आदमी होता है उसके बड़ाई के यही होता है कि वो अपने जमाने के तमाम बड़े लोगों को चित कर देता है, वो सामने खड़ा नहीं हो सकता, तो वो सबको चित कर देता है, वो खामोश हो जाते हैं। बड़ा आदमी वही होता है दूसरे की बड़ाई कबूल कर लेता है, कहता है मैं ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसकी कमिटमेंट तो गुड के साथ होती है ना, उसकी कमिटमेंट ट्रूथ के साथ है। अगर उसकी कमिटमेंट ट्रूथ के साथ है तो इंटरेस्ट हटदर्मी थोड़ी दिखाएगा, वो कहेगा हाँ मैं कमजोर है मेरी दलील, इसकी दलील बेहतर, मैं कबूल कर लेता हूँ, कबूल कर लेता हूँ। अगर वो उस वक्त का जितने बड़े फलसफी हैं जो हेराक्लाइटस को आर्ग्यू आउट कर रहे हैं, तो हेराक्लाइटस अगर उसे कन्वेंस कर लेता है, तो हेराक्लाइटस कन्विंस नहीं कर सका सबको। पार्मेनाइडीज ने उसके बराबर का तगड़ा आर्ग्यूमेंट खड़ा कर दिया। पार्मेनाइडीज कहता था ऑल इज वेस्ट, वो कहता था ऑल इज प्लग, ऑल इज, वो कहता है नहीं ये तो देखो हरकत कर रही, वो कहता नहीं हरकत नहीं कर रही, हर एक लम्हे के अंदर ये रेस्ट होता है। तो वो कहता है उसका जो शागिर्द था पार्मेनाइडीज का जीनो, उसने पैराडॉक्सिस बनाए जिसके अंदर उसने चार मुख्तलिफ केसेस लिए जिनके अंदर मोशन आपको दिखाई देती है, उसने रैशनली साबित किया कि कोई मूवमेंट नहीं हुई। जैसे एक आदमी ने तीर चलाया, एक तीर उड़ के उधर गया, उधर जाकर उसको हिट किया, उसने कहा भाई तीर तो उड़ के देखो उधर गया, मूवमेंट हुई है, वह नहीं मूवमेंट नहीं हुई। ये तीर हर एक लम्हे में स्पेस में एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है और हर एक लम्हे में ये स्टॉप रेस्ट में। तो अगर इन तमाम लम्हों को जोड़ा जाए तो फिर तुम्हें मूवमेंट दिखाई देगी, हकीकतन वो रेस्ट। जीनो पैराडॉक्सिस कहलाते हैं। कितने साल ये जिंदा है? 1800 ईयर, 1800 साल, 1800 साल तक उसको आर्ग्यू आउट नहीं कर सकते, उसको रिफ्यूट करने रैशनल थिंग। तो वो कहता है कि जैसे तुम मोशन कहते हो वो तो तुम्हारी नजर का धोखा है। तो हेराक्लाइटस का प्रॉब्लम, जो रिलेटिविस्ट होते हैं वो आम तौर पर या तो तजर्बे की सतह पे रहते हैं या यानी कि सेंसुअस प्लेजर्स प्लेजर सीकर्स होते हैं, या फिर वो रहते हैं फाइव सेंसेस के प्लेन, सेंसेस के प्लेन पे रहते हैं। तो सेंसेस के प्लेन पे जब तुम रहोगे तो तुम देख लो कि तुम्हारे देखने की सलाहियत, सुनने, छूने, चखने, ये जो तजर्बे की सतह पर जो कुछ भी तुम्हें मिलता है बदलते हुए हालात में बदल जाते हैं, बदलते हुए हालात में बदल जाता है। तो तजर्बा रिलेटिव ही होता है, तो तजर्बे बुनियाद पे जो एक्वेंटेंस होगी या इदराक होगा वो भी रिलेटिव होगा, और तजर्बे की बुनियाद पे जो अखलाकियात गवर्न करोगे वो भी रिलेटिव होगी। तो रिलेटिविटी को तुमने पहले से मान लिया है, इसलिए तुम इस मेटाफिजिक्स के साथ तुम्हारा जो मिल रहा है, यानी कि एक आम आदमी जो जब वो जवान होता है तो बच्चा होता है, तो कुछ और कर रहा होता है, थोड़ा मिच्योर होता है कुछ और करता है, बड़ा होता है कुछ और करता है, अधेड़ उम्र का होता है कुछ और करता है, बुढ़ा होता है कुछ और करता है। एक आदमी बूढ़ा होता है 25 साल से 28 साल की उम्र में आपने उसको देखा होगा, आपने उसको 40 साल की उम्र में, यानी कि कुछ लोग होते हैं जब आप बच्चे होते हैं और जवान होते हैं वो आप उनको देख रहे होते क्या क्या बदमाशी कर रहे हैं, तो वो बूढ़े हो जाते हैं, आप जवान हो जाता कर मैं इसकी इज्जत नहीं करता, फिर उसमें नमाज वमाज भी पढ़ता है, इज्जत क्यों नहीं करती, ये पाक नमाज ही अंडे छो उनको मैं सब जानता हूँ कि क्या करते हैं। नहीं अब ठीक हो गया होगा, पहले जवानी में बदमाशी की होगी, अब ठीक हो गया होगा, तुम क्यों नहीं मानते इसको, तो कहते हो कॉन्स्टेंट कर देते हो उसकी पर्सनैलिटी के किसी एस्पेक्ट को, क्यों, क्योंकि जो तजर्बा तुम्हारे हुआ था उसको तुमने फिक्स कर दिया, हालांकि तजर्बा तो फिक्स होता ही नहीं भाई, वो भी तो तुम्हारा तजर्बा था जिसकी बुनियाद पे तुमने ये राय कायम की, ये बदमाश आदमी है। अब ये तुम्हारा तजर्बा है ना कि वो जा रहा है नमाज पढ़ रहा है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अच्छी बात कर रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये भी तो इस तजर्बे को क्यों नहीं मान रहे, उस वो भी तो तजर्बे की बुनियाद पे तुमने राय कायम की थी ना उस बिचारे के बारे में, ठीक हो गया हालात में उसको बदल दिया हो, कोई गलती की हो उसे माफ कर दो, अल्लाह उसे माफ कर दो, तुम भी तो माफ कर दो उसको, नहीं तो ये क्या होता है, आप फिर तजर्बे को बुनियाद आपने बनाया हुआ है लेकिन उसकी मेटाफिजिक्स को नहीं मान रहे, तजर्बे की बुनियाद पर आप एब्सोल्यूट क्लेम करने काबिल ही नहीं होते, क्यों, तजर्बा तो बदल जाता है, अगर तजर्बे की बुनियाद पर तुमने कहा था कि ये बदमाश है, तुमने तजर्बा किया था उसको, अब तुम्हारा तजर्बा ये भी तो तुम्हें बता रहा है, तो तुम बेसिक प्रजम्पशन जो तुम्हारी है कि चूंकि मैंने इसे बदमाश देखा है या बदमाशियां करते देगा लिहाजा ये आप भी बदमाशी होगा, हिपोक्रेसी कर रहा है, तो उसकी तो तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है ना, सिवाय इसके हट धरनी है तुम्हारी। तो अगर तजर्बे को तुम बुनियाद बनाते हो तो रिलेटिविटी विल बी दी अनइंटेंडेड कोरोलरी और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस सोर्स ऑफ नॉलेज। तो जो समझने वाली बात है वो ये कि तारीख में तब्दीली का जो माबाद तबियात है अगर उसको आप मानते हो तो वो सिर्फ तारीख के मामले में नहीं रहेगी, फिर वो असरअंदाज होगी आपके तसव्वुरात हकीकत पर, फिर वो असरअंदाज होगी आपके तसव्वुर अखलाकियात पर, फिर वो असरअंदाज होगी आपके तसव्वुर इल्मियत पर। वो जो असल बात मैं आपको बताना चाहता था जो मैंने पहले बताना शुरू किया, देखें मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली आपकी जिंदगी को मायने देती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किसी हकीकत का तसव्वुर मौजूद है और उस तसव्वुर के पीछे एक इल्मियत मौजूद है, ये काफी नहीं है, क्योंकि आप वक्त किस चीज को देते हैं तो एक्सियोलॉजी आ जाती है, तो ये एक्सियोलॉजिकल जो मामला होता है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हिस्टोरिकल प्रोसेस होता है। सवाल ये कि हिस्टोरिकल प्रोसेस को आप किस तरह देखते हो, ये असल चीज है, यानी कि आप जब जिंदगी गुजारते हो एक माशरती और तारीखी अमल के अंदर, उस तारीखी अमल में कोई अखलाकियात परवान चढ़ जाती है, रिलेटिविटी की मोरालिटी, जब मोरालिटी और रिलेटिविटी जो है वो परवान चढ़ी हुई है, तो आप अगर तुम कह रहे हो नहीं बेटा ये नहीं करो, तो कह रहे नहीं मैं तो आजाद इंसान, आजादी क्यों, क्योंकि इस दौर का तारीखी सच है आजादी, सबको आजादी चाहिए, मजहबी आदमी को भी आजादी चाहिए, इनके नारा सबका एक ही होता है, हम क्या चाहते हैं आजादी, भाई, तो आजादी तो तवायफ को भी चाहिए, आजादी लॉयर को भी चाहिए, आजादी जज को भी चाहिए, आजादी वो क्या कहते हैं टीचर को भी चाहिए, आजादी जो है डॉक्टर को, सबको आजादी चाहिए। अगर तुमने आजादी को की कदर कबूल की तो इसका नजरिया कोई दूसरी कदर तो फिर बरकरार नहीं रह सकती ना। वो कह रहा है नहीं तुम खुदा के गुलाम हो, जूस कहते जुदाइज्म कहता है यू आर द स्लेव ऑफ गॉड, क्रिश्चियनिटी है यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इस्लाम कहता है यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। अब तुम कहो नहीं मैं तो फ्री हूं, तो किस बात के फ्री, नहीं मेरी मर्जी, मैं तो नहीं मानता टेन कमांडमेंट, भाई टेन कमांडमेंट में नहीं है जहन्नुम में जाएगा, कह नहीं मैं तो नहीं मानता बाइबल को, तो फिर तुम जाओ जहन्नुम, तो कह मैं तो नहीं मानता कुरान, जाओ जहन्नुम, तो कह नहीं ये तो मेरी आजादी के खिलाफ है, आप कौन होते मुझे जहन्नुम में भेजने वाले, तुम खुद ही जाओगे जहन्नुम में, लेकिन मैं बोला तो जाएगा ना देखो ये कर रहे हो तुम जहन्नुम में जाओगे, तो नहीं मेरी मर्जी, मैं तो इसे मैं तो नहीं समझता, मैं तो समझता हूँ कि सब ठीक है। तो बुनियादी तौर पर अगर आप जिस तारीखी दौर में जो एक्जियोलॉजिकल मॉडल पैदा हो गए हैं उनसे नबर्द आजमा होंगे, सिर्फ इस बुनियाद पे कि मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी का मसला हल करते हैं, बात नहीं बनेगी। ये कॉम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट है जिसमें सब चाहिए आपको, आपको बड़ी स्ट्रांग मेटाफिजिक्स चाहिए, आपको एक स्ट्रांग एपिस्टेमोलॉजी चाहिए, आपको एक ऐसी एक्जियोलॉजी चाहिए जिसपे लोग प्रैक्टिस करके दिखाएं, चाहे उनको जितनी तकलीफ हो जिंदा रह के दिखाएं, उसमें मरे नहीं जिंदा रह के दिखाएं, देखो जिंदा रहते हैं ऐसे, ये मैं रहा हूं जिंदा, ऐसे जिए कि जी जानता है, तुम करके दिखाओ, उसके नतीजे में तारीख का धारा पलटता है, तारीख का धारा पलट देते हैं ऐसे लोग, क्यों, क्योंकि जिस सतह पे जाके वो मुकाबला करते हैं वो होती है तारीख, तारीखी अमल के अंदर वो हुलूल कर जाते हैं और तारीखी अमल के बहाव को तब्दील कर देते हैं, लेकिन उसके लिए जबरदस्त सलाहियतें उसको चाहिए, उसको जहानत चाहिए, उसके पास इल्म होना चाहिए, और ये एक आदमी का काम नहीं है, हर आदमी जिस सतह का काम कर सकता है वो उस सतह का काम करे, सब लोगों को फलसफा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब एक आदमी एक आप कोई चीज पढ़ लें जान लें तो फिर उसके मुताबिक चलें, चल के दिखाएं कि देखो मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ, चल तो रहो, मैं नहीं हूं क्या, दूसरा कहता है कि ये भी तो खड़ा हुआ है, मैं भी, मैं क्यों नहीं खड़ा होगा, खड़ा होता है फिर आदमी, आदमी सीखता है, आदमी गुंडे डाकू लुटेरों से भी सीखता है, यार ये भी तो हो जाए, मैं खालिद भाई ने ही बताया था कि इमाम अहमद बिन हम्बल जब पकड़ के उनको लेके जा रहे थे तो डाकू जो था वो बाहर निकल रहा, उसने कहा मेरी ये पीठ देख लो अहमद, इस पे कोड़े पड़े हुए हैं, इसलिए कोड़े पड़ते हैं कि मैं डाका ना मारूं, आज मैं छूट रहा हूं, बाहर जाके सबसे पहले डाका मारूंगा, और ये जो खलीफा के कोड़े हैं मुझे डाका मारने से रोक नहीं सके, तुम हक के ऊपर जमे हुए हो, जमे रहे, डाकू ने बोला। अहमद बिन हम्बल 20 साल कोड़े खाए, 20 ईयर्स, लेकिन रिट्रीट नहीं किया, और उनकी जो कैपेसिटी थी ये कि हजारों मानने वाले थे उनके, लेकिन जी के दिखाया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हिस्टोरिकल प्रोसेस जो है उसे हम लोग खेल मजाक समझते हैं, एक इंसान की पूरी जिंदगी जब सामने खड़ी हुई होती है ना उसको डिनाय करना आसान नहीं होता, यानी कि अमेरिका में बोलीविया में अमेरिका के खिलाफ लड़ते हुए ही मारा गया है शहर, लेकिन अमेरिका के अंदर जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसकी तस्वीर अपने टी शर्ट से पहन के फिर रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी जिंदगी है, उन्होंने जिंदगी गुजारी है, मिनिस्टर बन गया था वो, इंडस्ट्री का मिनिस्टर था वो, इनकलाब के बाद इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर बना दिया गया था, उसने कहा मैं मिनिस्ट्री नहीं कर रहा, मैं तो लड़ूंगा इंपीरियलिज्म के खिलाफ, और लड़ते हुए मारा गया बोलीविया में, और ट्रैवलिंग की उसने, कन्वेंस किया, और जिस चीज को वो कन्वेंस करता था उसके पीछे उसकी पूरी जिंदगी थी। तो बताने का मतलब ये होता है कि एक इंसान की जो जिंदगी होती है ना उसको डिनाय करना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, नहीं ये सब बकवास था, सब बकवास, उसकी पूरी जिंदगी, उसका क्या करेंगे आप, सुकरात ऐसी जो है 2500 साल से जिंदा है। उसने कहा कि मैं स्टेट सारी जिंदगी कहता रहा कि स्टेट अगर नहीं होगी तो जस्टिस नहीं हो सकता, स्टेट का होना जरूरी है। उसी स्टेट ने उसके ऊपर गलत फैसला करके उसको फांसी दी, सजाए मौत दे दी। तो उन्होंने कहा आज मौका है तो भाग जा। तो उसने कहा नहीं मैं तो नहीं भागू। तो उसने कहा भाई फिर क्या? उसने कहा मैं सारी जिंदगी कहता रहा हूं कि स्टेट को ओबे करो, लिहाजा मेरे लिए जरूरी है कि स्टेट को ओबे करो, लिहाजा मैं जहर पीता
हूं।
तो जो आदमी जो कह रहा होता है उसके लिए तो उसे जान देनी पड़ती है, और ऐसे नहीं जान देता वो ऐसी वैल्यू के साथ जान देता है, उसकी जान लेना एक वैल्यू बन जाता है। विलियम वॉलेस के चार टुकड़े कर दिए थे, लेकिन जिस चीज को वैल्यू कहता था वो उसने करके दिखाया जिंदगी भर। और वो कहता रहा आयरिश जो किंग था उससे कहा कि देखो तुम्हारे खुद किंग नहीं बनना चाहता था, वो डीलेजिटिमाइज, वो भी तो लॉर्ड बन गया था, सर वॉलम विलियस बन गया था, वो भी क्लेम कर सकता था क्राउन को, लेकिन उसने कहा नहीं मैं चाहता हूं तुम ही करो, मैं तुम्हें करवाता हूं, मैं तुम्हें लड़ के दूंगा। जब उसको गद्दारी की पकड़ के बंद कर दिया, पकड़वा दिया, उसको सजाए मौत दी, चार टुकड़े हो गए, सारे जो है जो लंदन ब्रिज के साथ लटका दिया, टांगे एक तरफ, हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ, लेकिन जिंदा तो विलियम वॉलेस रहा, विलियम वॉलेस जिंदा रहा ना। तो आयरिश हमेशा बादशाह को भूल गया, विलियम वॉलेस को याद रखा। तो जिंदगी जो होती है वो आपने कैसे गुजारी ये इम्पोर्टेंट होता है बहुत, इस दुनिया के लिए, इंसानों के लिए। और मौत वो तो अल्लाह मियां के पास होती है, उसको पता है कि किस लिए बदमाशी कर रहा है, किस वजह कर रहा है, जो भी। लेकिन ये तारीख के अंदर ये फैसला होगा, वो कसौटी वही होती है तारीख में तुमने क्या किया। वो अगर तुम थियोरेटिकली बक बक किताबें वगैरह में बक बक वगैरह लिख दी, लेकिन उसके पीछे जिंदगी नहीं है तो असर नहीं आता। नहीं जानते ना लोग, कितने लोग हैं जिन्होंने मार्क से पहले नहीं लिखा गया, बाकूनी ने, अब्रोधा ने, यूटोपियन अनार्किस्टों ने क्या प्रॉब्लमटाइज नहीं किया कैपिटलिज्म को। लेकिन हर आदमी की मार्क्स की तरह की जिंदगी थोड़ी गुजारता है, पूरी जिंदगी मार पड़ते रहे, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर उधर निकाल दे, इधर बैठा हुआ, उधर बैठा हुआ, बच्चे मर रहे हैं। लेकिन वो जो कर रहा है उसने जिंदगी गुजारी, उसका इम्पैक्ट होता है, चाहे वो कोई किस तरह का भी हो। तो जो जो चीज असल चीज है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो तारीखी अमल है। तारीखी अमल में तुमने क्या किया, तो अगर आपने तारीखी अमल में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया तो फिर इम्कान कम है कि वो आपका ख्याल जिंदा रहे, क्योंकि जिंदा रहता है ख्याल जिंदगी के पीछे, जिंदगी के पीछे ख्याल जिंदा रहता है, और जिंदगी खत्म होने के बाद भी ख्याल जिंदा रहता है। लेकिन वो ख्याल उसी वक्त जिंदा रहता है जब उसके पीछे जिंदगी हो या जिंदगियां हो। रिलीजन के पीछे जिंदगियां होती हैं, बड़े बड़े लोग अपनी पूरी जान लगाते हैं और उसके नतीजे में लोग यकीन पैदा कर देते हैं, वो लोगों के अंदर उनको देख के लोगों को यकीन होने लगता है उस चीज पे जिसे उन्होंने नहीं देखा, उस हकीकत पे जो उन्होंने नहीं देखी, उनको यकीन हो जाता है। वो यकीन दिलाते हैं अपनी जिंदगी से, और जब वो यकीन पैदा कर देते हैं वो, उसके बाद वो मर जाए इससे क्या फर्क पड़ता है। तो असल चीज जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये कि आपको थ्योरेटिकल प्लेन पे जाके देखना पड़ता है कि मैं रिलेटिविटी को जब प्रज्यूम कर रहा हूं तो मेरा जरिया इल्म क्या है। अगर आपका जरिया इल्म सेंस एक्सपीरियंस तो फिर आप यही कहोगे हर चीज बदल जाती है, लेकिन अगर आपका जरिया इल्म वही है तो फिर आप कहोगे मेरे तजर्बात ठीक नहीं है, तजर्बात बदल जाते, मेरे तजर्बात को मातहत होना चाहिए वही के। तो सवाल ये कि तुम तजर्बे की बुनियाद पे वही को परखोगे या वही की बुनियाद पे तजर्बे को परखोगे, ये तो तुम्हारी थियोरी ऑफ नॉलेज पे डिपेंड करता है। अब तुम्हारी थियोरी ऑफ नॉलेज ही ठीक नहीं है तो क्या करें इसका, या तुम कहोगे मैं ही हकीकत हूँ, बोले नहीं तुम तो हकीकत, तुम तो मर जाओगे, बोले मेरी मौत ही मेरी तकमील है, बोले नहीं देखो हकीकत तो गॉड है वो तो नहीं मरता, बोले पता नहीं वो है नहीं, तो इसका मतलब भाई मेटाफिजिक्स भी ठीक नहीं, मैं तो हूँ लेकिन गॉड पता नहीं है नहीं, तो फिर तुम अपनी मेटाफिजिक्स का प्रॉब्लम है तुम्हारा। और तुम कहो ये कदर तुम करो गॉड उसकी विल को, नहीं मैं तो विल ऑफ द मैन को वैल्यू करता हूँ। अगर तुम्हारी कदर विल ऑफ द मैन को करते हो तो इसका मतलब विल ऑफ द गॉड को तुम रेलेवेंट नहीं समझते, तो तुम्हारी कदर ही ठीक नहीं है, कदर का पैमाना तुम्हारा ठीक नहीं है। एक रिलीजियस आदमी के परस्पेक्टिव से, कम अज कम मेरे परस्पेक्टिव से, मेरी कदर की सिर्फ वही हैसियत है जो कंसिस्टेंट हो विल ऑफ द गॉड से। अगर वो नहीं है विल ऑफ द गॉड से, मैं एक मिनट में रिट्रीट कर जाऊंगा, आंखें देखो भाई तुम्हारे, तुम इस चीज को कदर देते हो, इसको तो खुदा कहता है कदर नहीं, तो मैं फौरन रिट्रीट करूंगा। मैं कहूंगा हाँ ठीक है मेरे से ये हो गया, मैं गलती की, या ये कि मैं ये गलती बार बार करता रहूंगा, लेकिन ये कि है ये कदर नहीं है, ये बदमाशी। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं मैं कदर का पैमाना मैं खुद हूँ, मैं ही इंटेंशनल भी हूँ, तो फिर इसका मतलब है मैं कदर विल ऑफ द गॉड को नहीं देता, किसी और चीज को देता हूँ। तो ये सारा का सारा काम हो कहाँ रहा है, एक तारीखी अमल में हो रहा है। वो तारीखी अमल को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो हाथ से निकल जाएगा। यानी कि आप जब अंग्रेजों से आपको मार पड़ रही थी तो आपका बादशाह ठुमके लगा रहा था ना, उसने लड़ा क्या अंग्रेजों से? आप कहते हो मुसलमानों को शिकस्त, मुसलमानों ने लड़ा क्या अंग्रेजों से बताएं ना? अच्छा मुसलमानों की घमसान की लड़ाई कहाँ हुई अंग्रेजों से? एक बताएं आप लड़ाई जिसमें टफ फाइट हुई हो। टफ फाइट दी है हैदर अली ने, उसने तो मार मार के भुरकत निकाल दी, और उसके तो मुस्तकिल जो है मुसलमान उसके खिलाफ बगावत करते रहे मुस्तकिल पूरी जिंदगी, लेकिन वो ज्यादा चालाक था, ज्यादा जहीन था, उसने खड़े नहीं होने दिया। तो बेटा जो था वो उतना जहीन नहीं था, बहादुर तो था लेकिन जहीन नहीं था। एक बार उसने उसका जो वजीर था उसने कहा कि हैदर अली भी शेर का शिकार करता था और टीपू भी शेर का शिकार करता था, तो हैदर अली ने कहा तेरे बाप ने शेर मारा, तो ये पहली बार इसने गया ये जंगल, मैंने कहा ये शेर ये तो बिल्ली है, इतना तगड़ा था उसने शेर का जबड़ा चीर दिया। तो उसने कहा कि टीपू जो है वो बहुत बात, तो उसने कहा कि टीपू ताकतवर तो है लेकिन जहीन नहीं, वो अपनी ताकत शो करने के लिए अपने दुश्मन पैदा कर रहे। जिस चीज को तुम एक तीर से मार सकते हो क्यों तुम अपने जिस्म को जख्मी करते हो? नजरिया यही हुआ ना, हैदर अली को कोई धोखा नहीं दे सका, वो जहीन था और वो बहादुर भी था, लेकिन वो अपनी ताकत को वहीं इस्तेमाल करता था जहां इस्तेमाल करता था। तुम्हें क्या जरूरत है शेर से लड़ने की? लेकिन इससे ये तो उसके कोर्ट के अंदर शेर घूमते थे, लेकिन इससे ये कहां पता चलता है कि वो कितना जहीन है। जहीन होने का मतलब ये है कि आदमी ताकत जाया ना करे, ताकत सही वक्त पे इस्तेमाल होती है, और हिट एंड हिट हार्ड जब वो अपनी ताकत इस्तेमाल करता है तो फिर क्रैश कर देता है सामने। ये नहीं छोटे छोटे तमाशे नहीं करके दिखाता, वो अपनी ताकत, जिसके पास ताकत होती है और उसे पता होता है कि मैं स्ट्राइक करूंगा तो इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करता। यानी शाओलिन के बारे में मशहूर है कि जब वो मारते हैं तो एयर टू सरफेस मारते हैं, यानी कि वो एयर वेव के थ्रू अगर वो हिट करें तो सामने वाली आदमी की बॉडी जो है वो अंदर से डैमेज कर देते, लेकिन पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं मारते। तो आप ये कह सकते हो इनको मारना ही नहीं आता, वो कहते हैं नहीं मैं मारूंगा तो ये मर जाए, लिहाजा उनके मुंह पे कोई थूक दे जूते मारे वो पलट के नहीं
मारते,
उनको पता है ना मैं कितनी ताकत है मेरी, तो ताकत इस्तेमाल नहीं करता। ताकत जिसके पास होती है ड्रामेबाजी नहीं करता, वो पकड़ के गर्दन तोड़ देता है जब उसका दिल चाहता है। जिसके अंदर ताकत नहीं होती करा वो मारूंगा ठीक कर दूंगा ठीक कर दूंगा ठीक कर दूंगा, वही कर देना ठीक। ताकतवर ये थोड़ी करता है, ताकत जिसके पास होती है वो गारंटी होती है कि वो इस्तेमाल नहीं करेगा उसको, और जब इस्तेमाल करने पे आएगा तो फिर अजाब बन जाएगा आपके लिए, वो ताकत इस्तेमाल नहीं करता। इमाम जाफर सादिक के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मुझे इसमें आजम बता दें, उसने कहा मुझे तो इसमें आजम नहीं पता, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और इसमें आजम की खातिर आया, इसमें आजम की खातिर आया, पता था मैं इसमें आजम की खातिर इतना सफल हुआ। बोलने का अच्छा ठीक है, फिर मैं तो नहीं पता, नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि किसे पता है। तो तुम्हें पहला आदमी जो शहर में दाखिल होगा वो उससे तुम पूछना, वो तुम्हें बता देगा इसमें। वो जाके बैठ गया, इसमें आजम जिसे पता है वो हवाओं को कंट्रोल कर सकता है, आंख को कंट्रोल कर सकता है, पानी यानी पांचों चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, आग हवा मिट्टी पानी चारों उसके कंट्रोल हो। वो पूरी रात बैठा रहा, पूरा दिन बैठा रहा, कोई आदमी नहीं आया। वापस आके गुस्सा हुआ, उसने कहा कि आपने धोखा, उसने कहा कि सोचो कोई आदमी आया था, उसने कहा एक आदमी आया था उसको अंदर दाखिल नहीं हुआ, फटे हुए कपड़े थे, चेहरे पे मिट्टी लगी हुई थी, उसे भगा दिया। तो उसने पानी मांगा, वहीं नमाज पढ़ी, बाहर चला गया, शहर में दाखिल नहीं होने दिया। बोलेंगे वो इसमें आजम जानता था, तो इसमें आजम जानता था आग हवा मिट्टी पानी पे उसका कंट्रोल था। उसने कहा मुझे शहर में अंदर आए, उन्होंने कहा नहीं भाग जाओ तो चला गया। वो होता है ताकत, वो है ताकतवर, वो अपनी ताकत वहां इस्तेमाल करेगा जहां वो समझता है। कश्फे माजूब में भी है कि एक जो दावत पे उन्होंने बुलाया ये दाता साहब ने सब लोगों को, तो मुख्तलिफ सूफिया आए, तो कोई सूफी उड़ते हुए आए, कोई सूफी है। तो एक उन्होंने कहा नहीं अभी खाने का इंतजाम करते हैं, कुतुब आए, अब्दाल आए, या उन्होंने कहा नहीं अभी इंतजार करना है। तो ये आए बिल्कुल खत्म मरियल टाइप के, वो जब एंटर हुए उनका सबको खड़े हुआ और उनको बिठाया उनको। तो उन्होंने कहा कि हजरत वो जो था उसने कहा कि हजरत ये इतने बड़े कोई उड़ रहे हैं, कोई पानी पे चलते हुए आए, कोई ये, और ये बिल्कुल मरियल टाइप के, उनको आप बोल लेंगे ये अपने आप को मुकम्मल जो कुव्वत खुदा ने इसको अता कर दी वो इसको इस्तेमाल नहीं करता। ये असल में ये ऊपर उठ गया इन सब चीजों से। मतलब पानी पे तुम चल रहे हो क्या, इसमें कौन सी बड़ाई की बात, पानी पे क्यों चल रहे हो, क्यों दिखा रहे हो चार पानी पे चल के लोग, क्यों उड़ते हुए आ रहे हो, चल के आओ ना, तुम थकन होगी ये होगी वो होगी, टांगे दिए ना खुदा ने तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये दे दी सलाहियत, अब तुमको बैठे रहो उड़ के आ जाऊंगा। ये तो जो चल के आया उसी तरह आया जिस तरह प्रॉफिट चल के आया, देखा ये उसी तरह आया है जिस तरह प्रॉफिट चल के आया। प्रॉफिट के लिए मसला था ये सब कुछ करना, तो इनकी जिंदगी नहीं है प्रॉफिट से कंसिस्टेंट, इसलिए बड़े सूफिया नहीं है। बड़ा सूफी वो है वैसे ही जिंदगी गुजार रहा है जैसा प्रॉफिट, प्रॉफिट ना पानी पे चल के दिखाया करके दिखाया तमाशा, पानी पे चल के दिखाया और आग यू नो। तो वो आदमी है जिसने बगैर मोजे के अपनी बड़ाई मनवाता है, वो था बड़ा आदमी। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जो ये काम कर रहे हैं ना उसमें जो असल चीज है वो हमने तारीखी अमल से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, किताब लिख दी यू नो या कुछ लेक्चर दे दिए, पूरी जिंदगी के अंदर मुंझे जिस आदमी जिंदगी में होगी डेफिनेटली वो इम्पैक्ट डालेगा, ये हो ही नहीं सकता कि उसका इम्पैक्ट ना हो। और इम्पैक्ट को मेजर करने का पैमाना तारीख है, फौरन थोड़ी होगा वो, इट टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर। सैयद कुतुब ने जब किताब लिखी थी या सैयद कुतुब को जब मार पड़ी थी उस किताब को अपने घर में नहीं रख सकता था मालन से तारीख। इस वक्त जो वो हमास और हिजबुल्ला की जो है ना बाइबल है मालन से तारीख, इट टेक्स ऑलमोस्ट 50 or 60 years। उस वक्त नहीं समझ में आया लोगों को, जो बात कर रहा था नहीं समझ में आ रही थी ना लोगों को, लोगों का ये मरवाएगा हम लोगों को मरवा देगा ये कर देगा वो, अब वो इसने बता दिया। ये चीज को मच्योर होने में टाइम लगे, लेकिन जिस चीज को ठीक समझता उसके लिए उसने कोई ना सुसाइड बॉम्बिंग की ना कुछ की, फांसी पे चढ़ गया वो। उसने कहा रिट्रीट तो नहीं करता, रिट्रीट का क्या सवाल है, कोई ना कोई गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू की ना कुछ किया। उसने कहा ये है भाई और ये है मेरी पोजीशन, फांसी पे लटका दिए। इट टेक्स टाइम, जिंदगी गुजारी वैसे और फिर जिंदगी खत्म की, तो एक कुछ का इम्पैक्ट आने में आप वो कुछ हो ही नहीं रहा जल्दी से कुछ हो रहा, इसका मतलब हमारे सेंस एक्सपीरियंस को तुम बुनियाद बनाया, बस सेंस एक्सपीरियंस को बुनियाद तुमने बनाया, तो ठीक नहीं है तुम्हारा सोर्स ऑफ नॉलेज, बाद में पता चलेगा। अगर जंग में फ्रंट लाइन के जो लोग होते हैं अगर वो ये समझे कि मैं जंग का इख्तिताम देखूं तो कभी उस जंग में कामयाबी नहीं होगी, फ्रंट लाइन के सारे मारे जाते हैं, एक नहीं बचता। फ्रंट लाइन में जो लड़ रहे होते हैं सब मारे जाते हैं, लेकिन वो जंग का नक्शा पलट देते हैं, वो ही पलटते हैं जंग का नक्शा। वो इख्तिताम नहीं देख सकते, लेकिन उनके अंदर ये विजन होता है कि वो आखिर तक देख सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत वही अदा करते हैं कि मारे जाते हैं। तो फ्रंट लाइन के जो लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी दायरे में हो, वो अंजाम के चक्कर में नहीं रहते। अंजाम के चक्कर में जो है कभी कुछ नहीं करते, भाग जाएगा फौरन। मैं देख लेता हूँ कि क्या होगा, जंग में हारेंगे जीतेंगे, हारेंगे ऐसा करता हूँ, फिर मैं सबसे पीछे सब में चला सबसे पीछे सब में, अंजाम तो मुझे लग रहा है कि हम भागे, तो फिर मैं भाग ही जाता हूँ। तो बताने का मतलब ये कि जो अंजाम पे यकीन रखते हैं वो अंजाम को बदल देते हैं। अंजाम पे जो यकीन रखते हैं वो अंजाम को बदल देते हैं, और जो अंजाम देखना चाहते हैं अंजाम को बदल देते हैं। अपने यकीन से अंजाम को बदल देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है हम पलट देंगे, इससे क्या पता होता है। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन उसके पीछे जिंदगी होनी चाहिए, उसके पीछे पूरी जिंदगी होनी चाहिए। यानी कि छक्के आखिरी बॉल पे बहुत सारे बैट्समैन होने वाले, लेकिन नियादार का छक्का किसी को नहीं भूलता। क्यों? इसलिए कि उसके पीछे 135 रन्स भी हैं, उसके पीछे पूरी टीम आउट हुई है, उसके पीछे वो पूरा प्लानिंग कर रहा है, और 10 ओवर से 10 के एवरेज से चल रहा है, और पसीने में दवा खा रहा है, पसीने में लोग देख रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रही है, दोनों तरफ से खेल रहा है, दोनों तरफ से गेंदें पड़ रही है उसकी बॉडी में, रोक भी रहा, भाग भी रहा, और फिर आखिरी बॉल पे छक्का मारता है। वो होता है बैट्समैन, वो होता है बड़ा है। तो लपाड़े में किसी के भी आ जाते, कोई भी मार दे, लेकिन वो हर आदमी कैलकुलेटेड नहीं होता। इस तरह से विसात मोहरों को अपनी मर्जी से तय कर खेलता नहीं है बाजी, और आखिरी वक्त तक खेलता है, और आखिरी बॉल तक मुकाबला करता है और शिकस्त देता है, वो बड़ा क्रिकेटर कहलाता है। बहुत से लोग मारे हैं दुनिया, छह छह छक्के मारे हैं लोगों ने, लेकिन उनके याद नहीं रहते ना। इंडियंस को नींदें नहीं आती थी, उनकी नींदें उड़ गई, नाइट खौफ आता है, खौफ से वो कहते हैं हमें साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहते हैं, जब भी पाकिस्तान से खेलने आते हैं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में कि अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन उसके पीछे पूरी अमल होता है, एक बड़ा अमल होता है ना, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा और इतना पेनिट्रेटिंग होता है कि लोगों की हड्डियों में उतर जाता है, आपके मध्य मुकाबले की हड्डियों में उतर जाता है। खेल के अंदर जब ये हो सकता है तो मजहब के अंदर और इखलाकियात के अंदर, तहजीबों के अंदर नहीं हो सकता। जब एक आदमी कहता है ये तहजीब के मुकाबले मेरी तहजीब तहजीब नहीं, मैं तो जानवर, फिर वो आपके मुकाबले पे नहीं आता, वो आप जैसा बन जाता है। लेकिन इसके लिए तहजीब के जो सो कॉल्ड अलमबरदार हैं उन्हें जिंदगी गुजारनी पड़ती है वैसी, अगर वो नहीं गुजारते तो उसके नजर में दूसरा खड़ा हो जाएगा। वो ठेका थोड़ी लिया हुआ खुदा ने कि यही बदमाश बदकिरदार भिखारी इंसानों की जिंदगी का सौदा करने वाले बेगैरत बेशरम बेहया इनके जरिए काम ले, इसकी तौहीन है। यानी कि आप लेते हो किसी से, अगर आपको पता हो कि ये आदमी बेगैरत बेशरम और बेहया है तो कहें यार मेरा कोई काम कराओ, आपको खुश शर्म आई है, बदमाश आदमी से कैसे करवाऊ, कोई करवाते ही नहीं, तो खुदा की गैरत नहीं है क्या? खुदा करवाएगा बेगैरतों से काम? मुझे गैरतमंद चाहिए, ठीक हो, बेशरम बेगैरत बेहया हो गए खुदा काम नहीं ले, वो ऐसा आदमी खड़ा करता है जो ठीक हो। उस ठीक आदमी होने के लिए उसका तेल निकल जाता है, पूरी जिंदगी उसको गुजारनी पड़ती है, तो वो गुजार देता है तो फिर उसके आसमान से फरिश्ते भी उतर जाते हैं उसके लिए। जो कहता है वो वैसा ही हो जाता है, जिसके मुंह से निकलता है वैसा होना शुरू हो जाता है। ठीक है खालिद, अभी यही रोक लेते हैं।
हाँ
जी बिल्कुल। लेकिन हिस्टोरिकल प्रोसेस से अकदार नहीं निकलती। अकदार माँ बाप की तबियती होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम में और मार्क्सिस्टों में ये फर्क है, या हम में या हिस्टोरिसिज्म में ये फर्क है। हिस्टोरिसिज्म कहता है वो तारीखी अमल ही तुम्हें बताता है कि खैर क्या है। हम कहते हैं नहीं, वो वही के जरिए आता है, ऊपर से आता है। अगर तारीखी अमल से ही खैर और शर के मेयारात निकल रहे हैं तो तारीखी दायरे को तब्दील करने का क्या सवाल है? वो तो तारीख से ही निकल रहा है। यानी कि इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा और पब्लिश भी है उस पर भी है, द पॉसिबिलिटी ऑफ मेटा हिस्ट्री। यानी कि हिस्टोरिकल प्रोसेस से जो खैर निकलता है वो हिस्टोरिकल प्रोसेस को तब्दील नहीं कर सकता। मेटा हिस्टोरिकल जो वैल्यू होती है वो तब्दील करती है तारीखी अमल को। हमारा ये सवाल है, मेटा हिस्टोरिकल होना चाहिए। यानी कि वही जो होती है वो मेटा हिस्टोरिकल होती है।